सर, जिस दिशा में मैम गई है वहां आगे चलकर घना जंगल है। वहां रहने या ठहरने के लिए दूर दूर तक कोई घर नहीं है, पर एक पुराना मंदिर जरूर है जहां आप बहुत ही कम लोग जाते हैं। शायद मैम वही गई हों जहां शान गुस्से में अपना खून जला रहा था, वहीं कार्तिक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगा था। बहुत सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आरवी वहां हो सकती है, और उसने इस संभावना को शान के सामने व्यक्त कर दिया था। शान ने उसकी बात सुनी और कड़क आवाज में बोला, अब तुम जाओ और वक्त पर ऑफिस जाना। मुझे शायद कुछ देर हो जाए, तो मेरे आने तक आज की मीटिंग को तुम्हें ही संभालना है। इतना कहकर वो अपनी कार लेकर तेजी से उस तरफ निकल गया जहां आरवी को जाते उसने उस रिकॉर्डिंग में देखी थी। कार्तिक बेचारा अपना सर खुजाता रह गया, फिर अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही मिनटों में शान उस जगह पहुंच चुका था जहां आरवी आई थी, पर उसके आगे वो कहां गई ये वो नहीं जानता था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ घना जंगल था तो दूसरी तरफ सुनसान रास्ता। वो परेशान सा उस दोराहे पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद अचानक ही उसके कानों में घंटी बजने की आवाज पड़ी जो सुनसान रास्ते से आ रही थी। उसने निगाहें घुमाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर बना मंदिर उसको नजर आया जो काफी पुराना लग रहा था। शान को कार्तिक की कही बात याद आ गई और उसने कार उस दिशा में घुमा दी। कुछ ही सेकंड में कार उस मंदिर के सामने रुकी। शान कार से बाहर निकला और निगाहें उठाकर उस मंदिर को देखने लगा। चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा वो मंदिर देखने में ही काफी पुराना लग रहा था। सामने सीढ़ियां बनी थी, करीब 25 से 30 सीढ़ियों के बाद छोटा सा मंदिर नजर आ रहा था। शान, जिसने सालों से किसी मंदिर में कदम नहीं रखा था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखने से हिचकिचा रहा था। तभी उसके कानों में अर्पिता जी की कही बात पड़ी और वो तेजी से दौड़ते हुए उन सीढ़ियों को पार करते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंच गया जहां दाएं तरफ घना पीपल का पेड़ था जो उस मंदिर पर अपनी छाया बनाए हुए थे। पेड़ों पर बंदर लटक रहे थे। काफी पुराना मंदिर था पर साफ सुथरा था। शान ने निगाहें घुमाई पर उसको आरवी कहीं नजर नहीं आई, तो वो आगे बढ़ गया। मंदिर में अंदर दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई थी और पंडित जी पूजा कर रहे थे। कुछ वृद्ध लोग भी वहां मौजूद थे। शान ने निगाहें घुमाई तो एकदम कोने में पिलर से टिककर बैठी आरवी पर उसकी निगाहें पड़ी और वो खोया हुआ सा उसको देखने लगा। सफेद रंग का सूट जो कुछ गंदा हो चुका था, मांग में बस हल्का सा सिंदूर था। गोरा चेहरा लाल हो चुका था और लाल आंखें सूजी हुई नजर आ रही थी। वो सूनी निगाहों से एकटक माता की मूर्ति को देखे जा रही थी। लब एकदम खामोश थे, गालों पर आंसुओं की रेखाएं बनी हुई थी। आगे किए पैर पर अनेकों जख्म लगे हुए थे जिनसे खून रिस रहा था। वो बुत बनी बैठी हुई थी जैसे किसी बात का होश ही ना हो। लब भले खामोश थे पर उसकी सूनी आंखें बहुत से सवालों को खुद में समेटे हुए थी जिनका जवाब वो शायद माता रानी से मांग रही थी। आरवी को इस कंडीशन में देखकर शान एक पल को अपनी नफरत, गुस्सा, नाराजगी सब भूल गया था। प्यार तो करता था उससे, उसको दर्द और तकलीफ में देखकर भला उसको फर्क कैसे ना पड़ता। आरवी का दर्द शान की आंखों में उतर आया और उसके भाव एकदम से कोमल हो गए। कदम अनायास ही उसके तरफ पड़ गए। तभी अचानक ही उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर आ गई जो उसने ठाकुर निवास में देखी थी। उस तस्वीर में एक औरत एक 3 साल के आसपास की बच्ची को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उनके बगल में अमरजीत ठाकुर और दोनों के बीच में एक 7-8 साल का लड़का बैठा था जो उस बच्ची को हंसाने में लगा हुआ था। शान के भाव एकदम से बदल गए। कुछ पल पहले जिन आंखों में आरवी की परवाह और उसके लिए प्यार नजर आ रहा था, अब वो एकदम से नफरत और गुस्से में बदल चुका था। चेहरा एकदम सख्त था। वो गुस्से में तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। घर चलो, एक जानी पहचानी सी रौबदार आवाज आरवी के कानों में पड़ी तो उसकी निगाहें माता रानी से हटकर आवाज की दिशा में घूम गई। सामने खड़े शान पर नजर पड़ते ही उसने वापस अपना चेहरा माता की मूर्ति की तरफ घुमा लिया पर बोली कुछ नहीं। उसका यूं नजरअंदाज करना शान बर्दाश्त न कर सका और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे ये फालतू के टेंट्रम देखने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो। शान के चिल्लाने की आवाज सुनकर पंडित जी और आसपास मौजूद लोगों से देखने लगे। आरवी ने भी निगाहें उठाकर उसको देखा। शान का गुस्सा देखकर आरवी को भी गुस्सा आ गया। वैसे ही वो उसकी कल रात की बातों की वजह से बहुत आहत थी। अब उसके यूं गुस्सा करने पर उसका दिल रो पड़ा और उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, मेरा कोई घर नहीं और आपको यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं। वैसे भी आपको तो नफरत है ना मुझसे, मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं आपको, तो अब यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। जाइए, जाकर जश्न मनाइए,
मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब आपको मेरा मनहूस चेहरा देखना नहीं पड़ेगा और जाते जाते मेरा फैसला भी सुनते जाइए। मैं अब वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। मुझे अपनी जिंदगी के साथ जो भी करना होगा मैं देख लूँगी, पर दोबारा आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अब आपको मुझे और एक पल भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस रिश्ते के बोझ से आज़ाद कर दिया है और अब मुझे भी आज़ादी चाहिए आपकी नफ़रत से। शान की नफ़रत भरी बातों ने आरवी के प्यार भरे नाजुक दिल को बड़ी ही बेदर्दी से तोड़ दिया था। कल उसने शान की आंखों में अपने लिए बेहिसाब नफ़रत देखी थी, जिसने उसको अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। अब उसके अंदर और हिम्मत नहीं बची थी कि शान की जहर भरी बातों को सुन सके, जिसे वो दिलोजान से चाहती थी। आखिर उसकी नफरत वो बर्दाश्त करती भी तो कैसे। उसका मन उचट गया था, इसलिए अब वो दोबारा वहां जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी बातें और बोलने का लहजा दोनों ही शान के गुस्से को भड़काने को काफी था। मुझे भी तुम्हें वापस अपने सर पर बैठाने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बड़ी माँ की वजह से आया था, वरना मुझे तुम्हारे वहां होने या ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट तुम मेरी निगाहों से दूर रहो तो मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूंगा। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम्हारी परछाई भी मुझ पर या मेरी जिंदगी लेके ना पड़े, पर जो नाटक तुम महीनों से सबके सामने करती आ रही हो, जैसे तुमने मेरी ही फैमिली को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया हुआ है। मुझे मेरा सुकून तो मिलने से रहा, तुम्हारी वजह से बड़ी माँ की नाराजगी नहीं सह सकता मैं, इसलिए चुपचाप अपना ये नाटक बंद करो और मेरे साथ चलो, समझी। आरवी उसकी बातों से समझ गई कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि बड़ी माँ की वजह से आया है। मतलब उसको उसके जाने से कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अगर बड़ी माँ ना कहती तो वो उसको ढूंढने की कोशिश भी ना करता, ये तक जानने की तकल्लुफ नहीं करता कि वो कहाँ और किस हाल में है। ये सोचकर उसका दिल एक बार फिर रो पड़ा, पर उसने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया और बिना किसी भाव के बोली, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। उसने अपना फैसला सुना दिया और एक बार फिर सूमी निगाहों से सामने रखी दुर्गा माता की बड़ी सी मूर्ति को देखने लगी। कल से अब तक वो अपने दिल और दिमाग के बीच पूरी तरह उलझी हुई थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि शान एकदम से इतना कैसे बदल गया। क्या जो भी पिछले कुछ वक्त से उनके बीच था वो सब उसका भ्रम था? क्या उसकी जिंदगी तो किसी खूबसूरत सपने जैसी चल रही थी, फिर अचानक इतनी दर्द भरी हकीकत से उसका सामना उसको असहनीय दर्द का एहसास करवा रहा था।
आरवी ने दोबारा निगाहें उठाकर शान को देखा तक नहीं और गुस्से से उसको ही घूरे जा रहा था। शादी के वक्त भी आरवी ऐसे ही बिहेव करती थी उसके साथ, और उसका ये रवैया हमेशा से शान की बर्दाश्त से बाहर था। आज भी आरवी की बातों ने उसके गुस्से को हवा दे दिया था। शान कुछ पल गुस्से से उसको घूरता रहा, फिर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, मत आओ मेरे साथ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे नखरे उठाने का। ये तो तुम गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हें मनाकर घर लेकर जाऊंगा। तुम कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लो कि अगर अभी मेरे साथ तुम घर वापस नहीं गई तो उस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो दोबारा पलटकर उस घर की तरफ निगाहें उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना। टू बी कंटिन्यूड।